मनुष्य रूप में राधा तत्व को ही पुरस्कृत किया है। आदौ मध्ये च अन्ते च हरि ही सर्वत्र गीयते। तो जहाँ कृष्ण गेय है, जहाँ कृष्ण ध्येय है, जहाँ कृष्ण पेय है, वहां श्री राधा तत्व भी उन सब गुणों से सदा अलंकृत है। अब लोग राधा को शक्ति शब्द से प्रयोग करते हैं, हमारे अध्ययन में ये बात नहीं आई। हमारे की वल्लभाचार्य महाराज द्वितीय स्कंद में श्री रूपिणी कोणयति चरणारविंद, उस पर आप लिखते हैं कि जगति यावत्यः शक्तयः तावतीनां समासाम एव शक्तीनां मध्ये श्री आद्या शक्ति। श्री लक्ष्मी को हम शक्ति शब्द से प्रयोग कर सकते हैं, परंतु राधा शब्द को शक्ति शब्द से प्रयोग करने के लिए हमारी जिह्वा समर्थ है, क्योंकि राधक संसिद्धौ इस धातु से राधा शब्द बनता है, जिसका अर्थ है सिद्धि। कृष्ण के जीवन की सिद्धि का नाम राधा है। अतः राधा को हम शक्ति न मानकर कृष्ण की सिद्धि राधा है और राधा की सिद्धि श्री कृष्ण है। और जब तक इनको प्रणाम न किया जाए तब तक श्रीमद् भागवत का शुभारंभ नहीं हो सकता है। यद्यपि श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा सारमास की भवे, ऐसा भी परंपरा से हम वक्ताओं से सुना है कि श्री राधा सुखदेव जी के परम श्रद्धेय इस तरह ही, तो उससे यदि राधा जी का नाम श्री सुखदेव जी के मुख से निकल जाए तो 6 महीने की मूर्छा आ जाए तो परीक्षित का जो हित है वो बिगड़ जाए। नोच्यात स्पष्टम परीक्षित हितकर मणि। तो भी श्री वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं जब तक युगल स्वरूप को प्रणाम न किया जाए तब तक मंगलाचरण सफल नहीं हो सकता है। इसलिए श्री राधा जी के साथ कृष्ण का ध्यान धरते हुए जिस श्लोक में वर्णन है वह श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा। आइए द्वितीय स्कंध चौथा अध्याय और 14वां श्लोक। द्वितीय स्कंध चौथा अध्याय 14वां श्लोक इंगित मात्र करूंगा। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम् विदुर काष्ठाय मुहुर्योगिनाम्। अब देखिए राधा जी पर आ रही है। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रहुष्यते नमः। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम। सात्वताम की विशेष व्याकरणीय चर्चा पर न जाकर सात्वताम का अर्थ है भगवत पराधीना नाम। सात्वताम माने भक्त सदा भगवान के ही अधीन रहता है, भक्ता नाम क्वापि स्वातंत्र्यं न भवति। भक्त स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए भक्ति परवत और भगवत अधीन जो भक्त है वो है सात्वत। उनमें ऋषभाय श्रेष्ठ जो है वो श्री केशव भगवान है। उनके लिए हमें ऐसी प्रेरणा हो जो हम सुबह शाम रात्रि को सोते समय और उठते समय उस भगवान को ही प्रणाम करते रहे। यह प्रणाम भी केवल मानसिक मनोरथों से नहीं होंगे, इसलिए यहाँ लोट लकार का प्रयोग है। नमो नमः अस्तु, ऐसी कृपा करो जो हम उसको प्रणाम करें। विदुर काष्ठाय मुहुः योगी नाम, जो कुयोगी है, कुयोगी के दो अर्थ हैं, या तो योगी का विशेषण बना दो कुत्ता ये योगी ना ते कुयोगी ना, यदि ऐसा न माने तो शब्द का अर्थ है पृथ्वी, कऊ पृथ्वीयां ये योगी ना ते कुयोगी ना, पृथ्वी में जो योग के द्वारा केशव को प्राप्त करना चाहते हैं, योग को साधन बना करके केशव को साध्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैं भी योगी हूँ, पर योग साधना से भगवान मुझे नहीं मिला, पर निश्चित नैरगुण्य उत्तम श्लोक दी गया गृहित चेता राजर से आख्यान यद दीचवा, भक्ति से मैंने भागवत को पढ़ा, प्रेम लक्षणा भक्ति से, प्रेम में डूबने के बाद ही भगवान को पाया जाता है, जो लोग कुयोगी हैं उनके लिए विदुर काष्ठा केशव की काष्ठा जो दिशा है वो भी विशेषता दूरा, जब उनकी दिशा ही नहीं मिलेगी तो दिशा में रहने वाले प्रभु की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसलिए प्रेम लक्षणा भक्ति को छोड़कर इतर साधने परिश्रम मां को रुका, और किसी साधनों में आप लोग परिश्रम न करें। अब आइए निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, राधसा राधिकाया, तृतीय एक वचन है राधसा, सिद्धि मैंने कहा ना शक्ति नहीं है, ये कृष्ण की सिद्धि राधा है, वो कहती है जितनी यावंत विशेषणानि ब्रह्मणा तावंत सर्वांगेव विशेषणानि श्री राधा तत्व, निरस्त साम्यता ये ब्रह्म का विशेषण है, या निरस्त ना जिनके न तो कोई बराबरी कर सकता है और जिससे न कोई अधिक है, ऐसी सिद्धि जो राधा सिद्धि है, उनके साथ ब्रह्मणी भगवान के मंदिर जो है उसका नाम है अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म रूपी निज मंदिर में स्वधामणि निरस्त साम्यातिशयेन राधसा राधिकया सह रमुष्यति, रमण करने वाले उस केशव भगवान को सुखदेव जी प्रणाम करते हैं गिरिराज धरण। अब आइए एक दूसरा दर्शन और करा दे, अकाम फलविदं न परं विदाम सख्य वसून ननु निवेशयतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयो, आगे राजा जी वक्त्रं व्रजेश सुतयो रनु वेणु जुष्टं यैर्वानि पीत मनुरात कटाक्ष मोक्षं, वेणुगी वेणुगी का मधुर प्रसंग है, वस्त इच्छ वयौ वयौ अनुकृतौ येन इति वेणु वैति ब्रह्मानंद इति कामानंद, ब्रह्मानंद कामानंद एक उभौ आपुरानंद येन भगवद रसेन अनुकृतौ सोयम प्रेम रसात्मक भगवतो वेणुनाद प्रारभ्यते। तो वो कहते अक्षण वताम फलमिदम, अक्षण वताम अक्षण शब्द के दो अर्थ हैं, अक्षर माने नेत्र वालों के, अथवा अक्षर इंद्री वाचक है इंद्री वालों के, जिनको भगवान ने पाटव इंद्रियां दी है उन इंद्री वालों का फल है श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप को महारास में जब गलवाई डाली जाए और उसमें राधा और कृष्ण दोनों का मुख एक हो जाए, उस मुख को जिन्होंने अपने इंद्रियों का विषय बनाया उनकी इंद्रियां सार्थक है। अक्षण वताम फलम इदम, तो कैसी आप कह रही है सिद्धवत, क्योंकि वयम ही श्रोताया अतो विदामा, हम श्रुतियां हैं, हम सामान्य राधा पुरुष की गोपिका जो है वो सामान्य स्त्रियां नहीं है। तो नारद जी ने जब पूछा महाराज आप किसका तप कर रहे हैं ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने कहा न स्त्रियो गोप सुंदर यह पुत्रता श्रोतला ष्ठ वर्ष सहस्राणी तप तप्तम मया परा तथा मया प्राप्त ताम वही पादले। ब्रह्मा जी कहते हैं गोप की गोपिकाओं को स्त्रियां न समझे, वो तो साक्षात श्रुतियां वेद की ऋचाएं हैं। तो वेद की ऋचा होने के कारण से मैंने 60,000 वर्ष तक तप किया तो भी श्री गोपिकाओं के चरणारविंद के धूल को मैं प्राप्त नहीं कर सका। तो ब्रह्मादिकों से भी अनंत तप करने पर भी जो दौर्लभ्य है ऐसी उन गोपिकाओं के समाराध्या जो श्री राधिका है, उस राधिका का परम तत्व जो श्री कृष्ण है, भला वह नेत्रों का और इंद्रियों का फल हो उसमें क्या करे है। इसलिए कहते हैं अपरे जानंतु मा जानंतु नामो वयंतु विदामा, हम तो जानती हैं। इसलिए कहते हैं अक्षण वताम फल विदम, हे सख्य हे सखियो पशुन अनुनिवेश रहो, पशुओं के पीछे जो बहिरंगा गोप है उनको कह दिया भवंता पशु चारायंतु, आप तो पशुए चराओ। भगवान कई गाय चराने के लिए नहीं है, हरिस्तु केवलाम लीलाम करोत रस रूपिणी बलभद्रा रक्षण करोति, और गोपाहा गाश्चारयन्ति हरिस्तु श्री राधिकया सह निरंतरम रसास्मितां क्रीडां विदन्ति। तो कहते हैं कि वक्त्रं व्रजेत सुतयो, जरा इस पर थोड़ा सुन, वक्त्रं एक वचन है, वक्त्रं का अर्थ है मुखम। तो जब दो हो तो दोहों का दो मुख होने चाहिए, व्रजेत सुतयो हो यह सच्ची वचन है। जब दो है तो दो के मुख दो क्यों नहीं, कि नहीं आपने नहीं समझा। राधा कृष्ण जब रास में महारास में पधारते हैं और दोनों गलवाई डालते हैं तो उनका तेज आधा वो ले लेते हैं, उनकी श्यामता आधी वो ले लेती है, तो एक ही मुख दिखता है। इसलिए ब्रजेश सुपयो राधा कृष्णयो, आपने कहा ब्रजेश सुतयु का कहते अर्थ लगा दिया तो जरा उसका भी अर्थ सुन ले। ब्रजस्य ईशः ब्रजेशः, ब्रज का जो मालिक है उसे ब्रजेश कहते हैं। इधर ब्रजेशः नंदः उधर ब्रजेशः ब्रजभानु, ये दोनों ही ब्रजेश है। राधिका के पिता और श्री कृष्ण के पिता दोनों ही ब्रजेश है। सुतस्य सुताच्य माने कृष्णा, सुता माने राधा, सुतस्य सुताच इति सुतौ ब्रजेशयोः नंद ब्रजभानु ब्रजभानु नंदयोः सुतौ ब्रजेश सुतौ तयो ब्रजेश सुतयोः राधा कृष्णयोः। ब्रजभान पुत्री राधा और नंद पुत्र श्री कृष्ण ब्रजेश सुतयो राधा कृष्णयोर वक्त्रं मुखं यैर्वा निपीतम्। यही या ही काम वासनया भगवान मुखारविंदम श्री राधा मुखारविंदम वा नितराम पिबन्ति तान अहम न प्रबंधयामः, अभी तु केवलम रसात्मक दृष्ट्या इंद्रियाणाम साफल्य दृष्ट्या ये भगवंतम निरीक्षण भगवतो निरीक्षण करवन्ति तएव तएव वा धन्य धन्यतरा धन्यतम। वक्त्रं भुजेषु सुतयो मनोरक्षकटाक्ष उपसंहार करता हुआ आपका आदेश हुआ, अनुमेर उत्तम में जरा प्रेम से घबरा रहा था भाई, और मेरे राम रंग रक्षक बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे क्या भय है। तो भगवान के मुखार विंद का दर्शन करते समय श्री बल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि पंचभूत प्रकार ही भगवत दर्शन कुर्वन्ति। पांच लक्ष्य को लेकर लोग भगवान का दर्शन किया करते हैं। जो लोग इस दृष्टि से दर्शन कर रहे हैं कि अद्य वयम भगवन मुखम द्रक्ष्यामः, किमर्थम भगवान मुखे न तात्पर्य, किंतु भगवान यथा वेणु वादयति तथा वयम भी वेणु वादयिष्यामः, हम भी वेणु को उसी तरह बजा लेंगे। ये शिक्षण बुद्धिया सीखने की एक कला है, इसलिए कहा अनुवेणु वेणु अनुलक्षी कृत्य, उन दर्शकों का लक्ष्य वेणु है, इसलिए अनुवेणु ये वस्त्रों का विशेषण है। वेणुम अनुलक्षी कृत्य ये वक्त्रम पश्यन्ति ते शिक्षण दृष्ट्या भगवत साक्षात्कार कुर्वन्ति न ते धन्या न धन्य परा न वे धन्य पमा।
अर्धवेणु परि राजसे राधानन, अर्धवेणु परि राजसे राधानन, आगे राधा मुखम उभय समृष्ट मुखम मुखे न
आपने भाव बताया। वो जो वेणु है उसमें वेणु में अर्ध श्वास निश्वास श्री राधिका जी की निकल रही है और अर्ध श्वास निश्वास हमारे प्रियतम की निकल रही है। दोनों की श्वासों से जो महाराज वो रसई की हुआ तो वो रसो गई है वेणुनाथ, रस रूप होकर जड़ चेतन सबको ही डुबा दिया। अस्पंदन गतिमताम पुलक तरुणाम निर्योग पाक लक्षणयोर विचित्रम तथा वक्त्रम बजे तत्पयो रणवेर दुष्टम यैर्वान पीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम अनुरक्तानाम भक्तानाम कटाक्षानाम मोक्षो यत्र मुखे तदृशम मुखम। अनुरक्ता ही भक्ता, अनुरक्तानाम भक्तानाम कटाक्षानाम, कटाक्ष भक्तों के जो भगवान का दर्शन करते हैं तो प्रेममय नेत्र वाले भक्त अपने नेत्रों से उन कटाक्षों की वर्षा श्री ठाकुर जी और स्वामी जी पर करते हैं। तो अनुरक्तानाम भक्तानाम कटाक्षानाम मोक्षो यत्र वक्त्रे तादृशं वक्त्रम हि इन्द्रियवतां फलं भवति। तो इसलिए यहाँ राधा तत्व को कैसे हटाया जाए, उपसंहार में एक आपको हम वाक्य बोलते हैं कि यथा हि सर्व भावात्मा कृष्ण सापिता दृष्टि। कभी यदि कृष्ण केवल पुरुष होते तो वह सर्व कला परिपूर्ण नहीं माने जाते, तो उसमें स्त्रीत्व की कमी रह जाती, तो जिसमें अपरिपूर्णता है उसे परिपूर्ण कैसे कहा। उसी प्रकार श्री राधा रानी को भी यदि उसमें पुरुष भाव न होता तो वो भी अधूरी अपूर्ण होती। तो राधा को परिपूर्ण बनाने के लिए और श्री कृष्ण को परिपूर्ण बनाने के लिए शास्त्रकारों ने कहा श्री कृष्ण में सदा राधा तत्व निहित है और श्री राधा में सदा कृष्ण तत्व निहित है। कृष्ण तत्व के बिना राधा तत्व नहीं कहा जा सकता और राधा तत्व के बिना श्री कृष्ण तत्व को नहीं कहा जाता, इसलिए कहा यथा ही सर्व भावात्मा कृष्ण और जरा हमें आगे ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड है और उसमें गर्गाचारी का ये वाक्य आप लोगों के सामने उद्धृत करके मैं अपने इस व्याख्यान का समापन कर रहा हूँ। स्वरिंगितम चैदम ब्रह्म वैवर्ती श्री कृष्ण जन्म खंडे गर्ग वाक्य वर्धते साम्रजे राधा शुक्ले चंद्र कला यथा, शुक्ले शुक्ल पक्षी, शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है उस प्रकार श्री राधा रानी ब्रज में बढ़ती रही। अब ये श्री राधा आई कहाँ से, ये राधा में इतना तेज कहाँ से आया, वो स्पष्ट ब्रह्म वैवर्त पुराण में गर्गाचार्य जी लिखते हैं, श्री कृष्ण तेज होतेन, पूर्ण तेज श्री कृष्ण है, स आत्मान वेधा पातयत पतश्च पत्नी च भवता। जो श्री कृष्ण तत्व का जो रस रूप स्वरूप है उसके दो भाग हो गए, आधे भाग का नाम राधा तत्व है, आधे भाग का नाम कृष्ण तत्व है। यदि एक तत्व को उठाया जाएगा अपूर्णता रहेगी, परिपूर्ण बनाने के लिए दोनों तत्वों को एक मानना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण तेजसोर्धेन साज मूर्तिमति सती, वो राधा ने मूर्ति धारण की, एका मूर्ति, मूर्ति तो एक ही है, चाहे उसका नाम राधा कहो, चाहे उसका नाम कृष्ण कहो, चाहे पीताम्बर धारी हो, चाहे वो शाकिका धारी हो, एका मूर्ति दृढ़ा जाता, वो दो हो गई। अभेदो वेदो वेदे निरुच्यते, वेद कभी राधा तत्व को और कृष्ण तत्व को भेद विशिष्ट नहीं मानता, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। अभेदो वेदे निरूप्यते, और इयम स्त्री सपुमान किंबा, राधा को देख करके चतुर गोपियां कहती थी अयम राधा आगच्छति वा कृष्ण समागच्छति, राधा के स्वरूप में कृष्ण का दर्शन होता था और कृष्ण के स्वरूप में राधा का दर्शन होता था, तो ये स्त्री है या पुरुष है, और कृष्ण को देखकर कहते थे ये पुरुष है अथवा स्त्री है, इसका निर्णय वो गोपिका भी नहीं कर ले पाई, तो हम और आप क्या कर सकते हैं। इसलिए राधा तत्व विशिष्ट कृष्ण तत्व और कृष्ण तत्व विशिष्ट राधा तत्व अथवा कृष्ण के हृदय सदा राधा तत्व विद्यमान है और श्री राधिका के हृदय में सदा कृष्ण तत्व विद्यमान है, इसीलिए का स्वामिनी हृदय देवता, स्वामिनी के हृदय में केशव प्रभु सदा निवास करते हैं और केशव प्रभु के हृदय में सदा सदा राधा तत्व निवास करता है। इसलिए श्लोक के भागवत के 18,000 श्लोकों के एक एक श्लोक में भी 32 अक्षर होते हैं, अरे एक एक अक्षर में राधा तत्व और कृष्ण तत्व समाहित है। इतना कहकर मैं अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हुआ और मधुबेन को शुभाशीर्वाद देता हूँ जिनने परिश्रम करके इस ग्रंथ का निर्माण किया, और गुरुदेव और स्वामी जी और अतुल जी हमारे गोस्वामी जी का शुभाशीर्वाद प्राप्त किया। इसी तरह अपने जीवन में तुम अग्रसर बनो और तुम्हारा सौभाग्य स्वस्थता और चिरायु रहे।
हरे पद कमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मिन्दन्तं पुलकोत्करेण दिप्सन्नीपप्रसूनच्छविं प्रोद्धीकृत्य भुजद्वयं हरिहरीत्युच्चैर्वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्झरितैः कुर्वन् कुमुरीतलं गायद्भिर्मृजुपाक्षरैः परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासनभ्येव च पत्तानां पावनेभ्यो शिववैष्णवेभ्यो नमो नमः। आदरणीय श्री स्वामीजी महाराज समुपस्थित विद्वान मंडली आचार्यगण एवं भक्त मंडली, जहां तो रसिक श्रोमणियों के अपूर्व वक्तव्य का आपने श्रवण किया, उसके अतिरिक्त और कुछ कहने की सामर्थ्य इस चीज की नहीं है, फिर भी उन्हीं दोनों विद्वानों को अपना पक्षग्राह बना मैं श्रीमद् भागवत में
ईश्वर आशा तत्व के विषय में अपने वक्तव्य को सीमित करने का प्रयत्न करूंगा। श्रीमद् भागवत में राधा तत्व तो है परंतु राधा नाम स्पष्ट नहीं है। राधा नाम और राधा तत्व तात्विक विवेचन की दृष्टि से दोनों भले अभिन्न हो, क्योंकि जहां नाम और नामी में अभेद बताया गया है, जहां भगवान और भगवत रूप में जिस प्रकार अभेद है, उसी प्रकार भगवान के नाम और नामी में भी अभेद बताया गया है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह इत्यादि वचनों के द्वारा भिन्नत्वान नाम नामिनो हो, नाम नामी इन दोनों में अभेद है। श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की संहिता में श्री सुखदेव जी ने अपने उस निर्वचन में निस्संदेह राधा तत्व का परिपूर्ण रूप से सर्वत्र सर्वत्र विवेचन किया है। राधा नाम के स्पष्ट उच्चारण में श्री सनातन गोस्वामीवाद में बृहद भागवतामृत में जिन श्लोकों को उद्धृत किया उन्हें श्री आचार्य चरण अभी अभी प्रस्तुत कर चुके हैं कि मूर्छा कांग मास्ती भवे, अथवा श्री परीक्षित महाराज का परीक्षित हृत्क मुनि इत्यादि वचनों को बृहद भागवतामृत में जिस तरह से प्रतिपादन किया उनको अब विषय पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवती संहिता के यदि तात्पर्य का निर्णय करने का प्रयत्न करें तो उपक्रमोपसंहार अभ्यासो पूर्णता पूर्वता फलम अर्थवादो प्रतिच्य इन छहों लिंगम तात्पर्य निर्णय इत्यादि के द्वारा इन छहों वस्तुओं को यदि विचार किया जाए तो बिना श्री राधा के श्रीमद् भागवती संहिता में अन्य कुछ है ही नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से पूर्व दोनों विद्वान वक्ता आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत के उपक्रम श्लोक में श्री सनातन गोस्वामी पाद की टीका और सनातन गोस्वामी पाद के बृहद श्री भागवत संदर्भ में प्रीत संदर्भ में जो टीका है वो टीका विशुद्ध रूप से श्री स्वामी का ही निर्वचन करने वाली टीका है। वे इस बात को बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादन करना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत का आदि श्लोक जिसमें एक वस्तु निर्देश दिया गया है जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण को व्यक्त करता है वह आदि श्लोक श्री स्वामी का परिपूर्ण रूप से निर्वचन करने वाला है। जहां जन्माद्यस्योन्वयादर्ता उस तत्व परम धीमहि सत्यम परम धीमहि जहां परिशब्द का प्रयोग करते हैं वहां परिशब्द के द्वारा देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांत सम्मोहिनी परा इस पराशब्द की जो व्याख्या है वह व्याख्या देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता उस पर देवता की जो व्याख्या है वो सारी व्याख्याएं यहाँ संगमित हो जाएंगी। उसको इन विश्व समुदाय के बीच में दोहराने की आवश्यकता नहीं। जैसे श्री श्यामसुंदर से श्रृंगार रस का आविर्भाव है इतर पश्चिम शब्द के द्वारा श्री स्वामिनी अभिन्न स्वरूपा श्री श्यामसुंदर की जो अभिन्न स्वरूपा है उनसे भी उस श्रृंगार रस का ही परिपूर्ण रूप से आद्य जो श्रृंगार रस है उस आद्य श्रृंगार रस का परिपूर्ण रूप से विस्तार हुआ परिपूर्ण रूप से प्राकट्य हुआ इस बात को आद्य श्लोक में श्री जीव गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादन करते हैं और ये प्रतिपादन करते हैं कि श्री राधिका के बिना श्रीमद् भागवत में अन्य कोई दूसरा तत्व नहीं। अर्थ अर्थ शब्द के द्वारा भी मिलन रूप जो अर्थ जहाँ श्रृंगार और श्रृंगार में संयोग और वियोग अथवा मिलन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, कहीं पत्र प्रेषण के द्वारा, कहीं दूध प्रेषण के द्वारा, कहीं समृद्धिमान संयोग में, कुरुक्षेत्र मिलन में स्वयं श्री श्याम सुंदर ब्रज गोपिकाओं के साथ में मिलन प्राप्त करके जहाँ श्री प्रयागराज के प्रेम का संपोषण कर रहे हैं, उस समृद्धिमान संयोग की प्रक्रिया के माध्यम से कहीं दूर प्रवास अथवा लघु प्रवास के पश्चात प्राप्त होने वाले संबंध संयोग की प्रक्रिया के द्वारा कहीं पूर्व राग लीला में कि गोपी नाम परमानंद आशीष गोविंद दर्शन है, इसके द्वारा कहीं संक्षिप्त और संकीर्ण संभोग की प्रक्रिया में उस श्राहा तत्व का अर्थ एक सौभिज्ञ स्वराग इस पद के द्वारा श्री श्याम सुंदर श्री स्वामी के साथ निरंतर निरंतर मिलन प्राप्त करना चाहते हैं। उन सबों उस मिलन रूप अर्थ में वे परम परम अभिज्ञ है और स्वराग कह करके भी जैसा निरूपण किया कि निरस्त सामने आपसे आपका स्वधामनि ब्रह्मणि रंचते नमः स्वधामनि निज धाम रूप श्री ब्रह्म व्यापक श्री वृंदावन भाव में जो विराजमान है, इसी प्रकार स्वराग शब्द के द्वारा भी वैष्णव आचार्यों ने इस बात को सुपुष्ट किया है कि स्वराग का तात्पर्य है स्वस्मिन् राजते, अपनी प्रयागों के मध्य में ही वे परिपूर्ण रूप से शोभित होते हैं। श्री निज वृंदावन भाव में ही उनकी परिपूर्ण रूप से शोभा है, वह स्वशब्द जहाँ उनसे अभिन्न उनकी आधारिणी शक्ति स्वरूप श्री प्रयागों का वाक्य वाचक है, वहाँ श्री वृंदावन धाम का भी वह अभिन्न रूप से वाचक है। स्वराग शब्द के द्वारा श्री आचार्य ने एक बहुत सुंदर बात का निर्देशन किया, जहाँ श्री राधिका के विषय में शक्ति शब्द के प्रयोग करने में कहीं संकोच की बात कहूं, कहीं कहीं जो संकोच की बात मन में उदय होती है, वह शक्ति किसी अन्य अर्थ में शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं है। शक्ति का प्रयोग श्री सर्व संवादिनी में जीव गोस्वामी पाद रूपण करते हैं कि स्वरूप कार्योन्मुख शक्ति शब्द नाभिधीय, स्वरूप ही कार्योन्मुख होने पर शक्ति शब्द के द्वारा अभिव्यक्त होता है। सूर्य में प्रकाश है, सूर्य प्रचुर प्रकाश है, वह प्रकाशमय है और मय प्रत्यय जो है वह प्रचुर प्रकाश के अर्थ में ही प्रयुक्त होने वाला है। जहाँ ब्रह्मसूत्र रूपा करते हैं आनंदमयोभ्याता, वहां पर मय प्रत्यय जो है आनंदमय, ये जो मय प्रत्यय है, ये मय प्रत्यय है प्राचुरार्थ में है या विकारार्थ में नहीं है। तो जहाँ श्री श्याम सुंदर आनंदमय होकर के विराजमान है, जहाँ आनंद की परिपूर्णता श्री श्याम सुंदर में विराजमान है, उस परिपूर्णता का ही पूर्ण पूर्ण प्रकाशन यदि कहीं है तो वो श्री स्वामी श्री राधिका में। अतः शक्ति शब्द के द्वारा यदि कहीं श्री राधारानी का निर्वचन आचार्यगण करते हैं तो वह निर्वचन शक्ति को कोई भिन्न वस्तु मान करके नहीं करते हैं, बल्कि शक्ति को स्वरूप से अभिन्न मान करके ही उस शक्ति शब्द का निर्वचन करते हैं। श्रीमद् भागवत संहिता में जिस तत्व का निरूपण किया गया है वह तत्व सारा सर्वदा परिपूर्ण रूप से सविशेष ही है, वह भेद सहिष्णु अभेद को ही व्यक्त करने वाला है। विशेष का तात्पर्य होता है, आचार्य ने विशेष का लक्षण ही निरूपण किया है कि जो भेद सहिष्णु अभेद है उसे ही विशेष कहा जाएगा। श्री स्वामी श्याम सुंदर से सर्वदा सर्वथा अभिन्न है, बदलते तत्व ये ज्ञान स्वयं ब्रह्मेद परमात्मे भगवान सत्यते, और उस जिस तत्व को जो परम परम उपास्य वस्तु है उस उपास्य वस्तु को प्राप्त किया जाएगा। पश्चिम की आत्मिक आत्मान भक्त्या श्रुत गृह, उस तत्व को जहां बदन तत्व की व्याख्या पहले श्लोक में करे आए हैं कि ब्रह्मेद परमात्मे थे भगवान शब्द थे, कि वो जो अद्वय ज्ञान पदार्थ है, तत्व का तात्पर्य है जो परम परम उपास्य वस्तु है, परम परम श्रेष्ठ वस्तु है, जो वास्तविक वस्तु है, जो आनंदमय वस्तु है, उस आनंदमय वस्तु की तीन प्रकार से प्रमुखता निर्वचन होता है। कहीं जहाँ शक्ति और शक्तिमान का भेद प्राप्त नहीं है, वहीं उसे ब्रह्म कह के निरूपण किया जाएगा। अव्यक्त शक्ति शक्तिमान भेद गया प्रतीयमान पदार्थ ब्रह्म है, और जहाँ वह ही ब्रह्म पदार्थ, वही जो तत्व पदार्थ है, उसकी शक्तियों का किंचित प्रकाशन होगा, उसे ही परमात्मा कहा जाएगा। और जहाँ शक्तियों का परिपूर्ण प्रकाशन होगा, उसे ही भगवान कहा जाएगा। उस भगवत्ता की पूर्ण पूर्ण प्रकाशन यदि कहीं है, तो वो श्री स्वामी के साथ में ही है। रेवे से आत्मा कहा आत्मा रामों के दी गया, आत्मा शब्द के द्वारा कंद पुराण में स्पष्ट रूप से निरूपण किया गया कि आत्मा तो राधिका सत्य सही ब्रह्मादसम आत्मा राम इति प्रोक्ता। वे आत्मा श्री स्वामी से भिन्न नहीं है। जहाँ शक्ति शक्तिमान की अहेरता और भगवत्ता का परिपूर्ण प्रकाशन यदि कहीं प्राप्त है, तो वो श्री स्वामी के बीच में है। भगवान देवकी सुतः मध्य मणि नाम सीमा नाम महामार्ग तो शांतर की तो शोभा है ही, ब्रह्म रूप में भी वह आनंद स्वरूप है, परमात्मा रूप में भी वह आनंद स्वरूप है, परंतु अतिशुषुभ की स्थिति कहीं है, कहीं बनती है, तो वह अतिशुषुभ की स्थिति रास मंडल मंडित होकर के जब श्री श्यामचंदर विराजमान है, जैसे पुरुष शक्ति में यथा उसमें विरोधता अधिकमता था, पुरुष शक्ति में यथा शक्ति शब्द के द्वारा उन श्री श्याम सुंदर की परम परम शोभा का निरूपण श्रीमद् भागवत संहिता परिपूर्ण रूप से प्रतिपादन करती है। जहाँ पर श्री स्वामी के साथ ही आपकी अपूर्व अपूर्व शोभा प्राप्त होगी। श्री राधारानी श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति स्वरूपा होकर के आह्लादनी शक्ति के सारांश जो प्रेम, उस प्रेम की भी पराकाष्ठा जो महाभाव है, वह महाभाव स्वरूप होकर के श्री स्वामी विराजमान है, और उस महाभाव का श्रीमद् भागवत संहिता में परिपूर्ण परिपूर्ण रूप से बहुत अच्छी तरह से निर्वचन किया गया है, बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादन किया गया है। जो असाधारण गुण है, वो असाधारण गुण है कि उसमें अत्यंत अत्यंत उत्कंठामयी प्रीति का निरूपण किया जाए, जैसी उत्कंठा कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो सकती, और वो उत्कंठा प्राप्त होती है एकमात्र वार्यमानता सहित। जहाँ दुर्लभता होती है, जहाँ वार्यमानता होती है, वहां उत्कंठा की अत्यंत अत्यंत वृद्धि होती है, और उस वार्यमानता सहित जो प्रेम है, उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए ही श्री श्याम सुंदर को अपने उस बिंब को स्वयोग माया बलम दर्शयिता गृहीतम, अपने जो माया बल को आप दिखाते हुए उस अपने अप्रकट स्वरूप को जगत में प्रकट करते हैं। उस योग माया का श्री श्याम सुंदर की उससे शक्ति का श्री गोलोक धाम में प्रकाशन संभव नहीं था। वहां पर उस प्रकाशन में कहीं न कहीं न्यूनता थी, क्योंकि वह प्रकाशन गोलोक की जो लीला है उसे वैष्णव आचार्यों ने, प्रमुखतः गौड़ीय आचार्यों ने हृदवल लीला कहा, परंतु जो प्रकट लीला है उस प्रकट लीला को नदवल लीला कहा गया है, नद के समान प्रवाहमान है, अतः उसमें वार्यमानता होने के कारण, उसमें उत्कंठा होने के कारण वहां पर उत्कर्ष अधिक है। सा वसुरंग तत्व तो जहाँ श्री स्वामी श्याम सुंदर से अत्यंत अत्यंत अभिन्न है, और वधु पद के द्वारा उनकी अत्यंत अत्यंत परम क्रियात्व का प्रतिपादन किया गया है, वहां पर श्रीमद् भागवती संहिता तावार्यमाना पत्नी ही अथवा गोपी श्री श्रीमद् भागवती संहिता ये निरूपण करती है कि नाकुलं कृष्णाय मोहिता सत्य माया मन मानस पार्श्वस्थान स्वांग स्वांग दारांग ब्रजंतः इत्यादि पदों के द्वारा उस वार्यमानता को भी प्रकट करते हैं। और वो वार्यमानता वह दुर्लभता गोलोक आदि लोक में भी प्राप्त नहीं। गोलोक की जो लीला है वह लीला भी अत्यंत अत्यंत स्वीयतापूर्ण लीला है। उस स्वीयतापूर्ण लीला में जहां पर के परम स्वीय होकर के, यहाँ एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि श्री स्वामी स्वकीय नहीं है, उनके लिए वैष्णव आचार्य जो बहुत विवेचन करने के बाद में जो शब्द देते हैं वो देते हैं कि परमस्त्रिया स्वकिया और परम क्रिया में अंतर है। स्वकिया जो है वह कहीं ना कहीं किसी संबंध के कारण बनी हुई होती है, उसकी प्रीति में संबंध व्यवहार संबंध कारण होता है, परंतु परम क्रिया कहने में वह संबंध की का भी उल्लंघन कर देती है। अग्नि और अग्नि के ताप का किसी ने विवाह नहीं कराया, सूर्य और सूर्य के प्रकाश का किसी ने विवाह नहीं कराया, अतः सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य और सूर्य की शक्ति, अग्नि और अग्नि की तापकता शक्ति, ये दोनों स्वकीय नहीं है, ये है परमस्तुया, स्वरूप भूता है, परमस्तुया है। अतः सा बधुरंग तप्यतः है श्री स्वामी परम परम श्यामसुंदर से अभिन्न परमस्तुया, परंतु श्री लीला शक्ति ही केवल वाद्यमानता को उत्पन्न करके लीला शक्ति ही उन श्री स्वामी में उत्कंठा की अतिशयता और उस उत्कंठा की अतिशयता में कि यामा भजन दुर्जर गे श्रृंखला समृद्ध तद प्रत्याप साधना, कि दुर्जर गे श्रृंखला का भी त्याग करके श्री श्याम सुंदर का जहाँ समाराधन करती हैं, जहाँ वे आराधिका होकर के विराजमान होती हैं, उस आराधिकात्व के सामने श्री स्वामी के उस आराधिकात्व के सामने श्याम सुंदर को भी अंजलि बांध करके खड़ा होना होना पड़ता है। जिस प्रेम की उत्कृष्टता में ऐसा बल है जो कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम आत्माराम उन कृष्ण को भी अंजलि बांध करके सामने खड़ा कर लेता है, उनको भी ये कहना पड़ता है कि नबारे हम निर्वत्त सविजाम, और जिस स्वरूप का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण को भी श्री गौरहरी होकर के प्रकट होना पड़ता है, उस आस्वाद को प्राप्त करने के लिए उन श्री श्याम सुंदर के श्याम सुंदर को भी अपने सामने अंजलि बांध करके खड़ा करने वाली यदि कोई परम शक्तिमती परम समर्था यदि रति की कोई अधिकारिणी है तो वे श्री स्वामी ही है, स्वामी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। समर्था रति का लक्षण ही आचार्यों ने वर्णन किया है। श्री रूप गोस्वामी बात मैंने अपने प्रबंध में इस बात को कहीं प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया, श्री रूप गोस्वामी बात ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादन किया है कि किंचित विशेष मापन्ना संभोगेच्छा ययाधिपः रत्या तादात्म आपन्ना समर्था इत भण्यति, कि जहां पर श्री कृष्ण के कृष्ण की रति और मिलन की इच्छा ये दोनों इस प्रकार से मिल जाए और मिल करके भी उस कृष्ण सेवा की अभिलाषा में इस प्रकार का उत्कर्ष प्राप्त हो जाए, जिस उत्कर्ष में श्री स्वामी कहे तो ये हे प्यारे तुम प्यारे अपने चरणों को मेरे भक्तस्थल के ऊपर विराजमान करो, मेरे हृदय के कष्ट जो है उनको दूर करो, परंतु उनका मूल तात्पर्य निज कष्ट को दूर करने का कदापि कदापि नहीं है। उनका जो मूल तात्पर्य है वह तात्पर्य उस गोपी जीव के 18वें श्लोक में प्रकट हो जाता है, जहां पर तत्सुखित्व जिसको अभी तक छिपा करके रखा वह छिपा हुआ तत्सुखित्व अत्यंत अत्यंत बाहर प्रकट हो जाता है। श्री स्वामी के इस बाल्यमानता युक्त जार रसित्व को जिसको लेकर के श्री परीक्षित महाराज का अन्य जीवों की ओर से प्रश्न है और श्री सुखदेव जी का जहाँ तत्व की दृष्टि से निर्वचन है और उसका लीला पर जो समाधान है कि नासुयन कल्पिता मोहिता सत्य माया, श्री लीला शक्ति ही आस्वादन कराने के लिए जिन ब्रजवासियों का यह धर्मात्तरे कृते जिन ब्रजवासियों की संपूर्ण वस्तु श्री कृष्ण के लिए थी, उन ब्रजवासियों में ही पहले तो वे पति भाव उत्पन्न करते हैं, पति मन्य भाव उत्पन्न करते हैं और वे ही उनमें असूया उत्पन्न करते हैं और असूया का समाधान भी वे ही करते हैं। असूया का भाव तत्वतः सिद्धांत की दृष्टि से विचार किया जाए तो ब्रज में कृष्ण के प्रति असूया का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है, जहां पर सर्वेंग पशुतय होकर के सारे ब्रजवासी कृष्ण के उन्मुख हो रहे हैं, वहां पर कहीं भी कभी भी किसी भी स्थिति में कृष्ण के प्रति अहमिया का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, ये तो लीला शक्ति को लीला का समाधान करना है, वारी मान्यता उत्पन्न करके श्री ब्रजगोपिकाओं की उत्कंठा की अत्यंत अत्यंत समृद्धि करनी है, और श्री श्याम सुंदर ने उस वारी मान्यता के सहित जो अल्पपत्युक्त जो प्रेम है उस प्रेम का अत्यंत उत्कर्ष प्रकट कराना है, इसीलिए लीला शक्ति ने वह असूया उत्पन्न की और उसका समाधान भी खुद ने किया। वो असूया भी झूठी, जब असूया झूठी है तो समाधान भी झूठा अपने आप होगा, तो जब असूया ही झूठी है तो समाधान भी झूठा होगा ही, परंतु लीला के उत्कर्ष के लिए ही ये समाधान। श्री राधा पत्तु के श्रीमद भागवत के प्रसंग में राधा पत्तु के विवेचन के अंतर्गत एक वस्तु का निर्देश करना और चाहूंगा, और वह तत्व है सखी तत्व या मंजरी तत्व। बिना सखी या मंजरी तत्व के उस लीला का समाधान नहीं हो सकता, जहां रासोत्सव संप्रुक्त गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तापा मध्य द्वयोर्द्वयो रासोत्सव संप्रुक्त हुआ, यहां पर श्री सुखदेव जी रासोत्सव संप्रुक्त कर्ता जो है वो रासोत्सव को मान रहे हैं, श्री कृष्ण को कर्ता नहीं मान रहे। प्रवृत्त कौन हुआ? बोले रासोत्सव प्रवृत्त हुआ, और योगेश्वरेण कृष्णेन, कृष्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, कृष्ण तो केवल कारण मात्र है, कृष्ण तो केवल उपादान मात्र है, कृष्ण स्वयं रास का रास के कर्ता नहीं है, रास के कर्ता है लीला शक्ति। ब्रज लीला का ये वैशिष्ट्य है कि वहां लीला शक्ति ही प्रधान होकर के विद्यमान है। प्रेम आवेश कहते हैं प्रेम आवेश प्रभु नाही निजानुसंधान इच्छा जाने लीला शक्ति कौरिया समाधान। प्रेम आवेश में कि प्रभु को मैं करता हूं, मैं इस लीला को इस तरह से बढ़ाऊं, ये अनुसंधान नहीं है, इच्छा जान करके लीला शक्ति ही संपूर्ण संपूर्ण लीला का समाधान करती है, वे ही दुर्घट घटना पटियसी है, उनका ही आश्रय लीला के प्रारंभ के पूर्व श्री श्याम सुंदर को योग माया उपास्यता कहकर के लेना पड़ता है, उस योग माया पद के द्वारा भी श्री स्वामी के चरणों का आश्रय ही श्री श्याम सुंदर को लेना पड़ता है।